ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोय सर्वसाहूणं परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की
जय।
आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की
जय।
स्वाध्याय का कार्योत्सर करें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक और कायोत्सर्ग। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवम् नाव्रतैर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिगजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाकेनाकौकसां सौख्यम् नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानाम् यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहन्धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दण्डेन पात्यति। तो राग और द्वेष, इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि इस प्रकार चिंतन करना, जिसके प्रति राग हो तो ये सोचना कि कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, और द्वेष हो तो ये सोचना कि वो मेरे लिए द्वेष का कारण क्यों बना, मैंने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तो किया होगा, अकारण तो कुछ हो नहीं सकता। तो विराधक, मैं स्वयं विराधक हूं, तो विराधक होने के कारण हंत्रे जनाय कथम परिकुप्यति। हे आत्मन, तू अपने को मारने वाले के प्रति क्यों नाराज होता है, अपना अनिष्ट करने वाले से क्यों कुपित होता है? क्योंकि तू स्वयं विराधक है, जो दोनों पैरों से त्रिअंगुल को गिराना चाहेगा तो दंडा तो उसको लगेगा और वो खुद गिराया जाएगा। इसी प्रकार अपन ने भी उस जन्म में कुछ किया है तो आज जो शत्रु बनकर अपने को कष्ट दे रहे हैं वो तो मात्र प्रतिक्रिया है। अपन ने क्रिया वहां की थी और यहां पर उसकी प्रतिक्रिया अपने सामने है, तो फिर अपन इससे क्यों नाराज हो रहे हैं, अपनी मूर्खता पर क्यों नाराज नहीं होते? दोनों पैरों से गिराने की क्या आवश्यकता थी उस त्रिअंगुल को? इसी प्रकार वहां पर कषाय करके उसका अहित करने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी? आज उसका फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि पाप करते समय अगर निर्णय कर लो आपके पाप करना है मुझे, तो साथ में यह भी तय कर लेना कि इसका फल भी मुझे ही भोगना है, किसी और को नहीं। पाप करने का अगर फैसला करते हो तो फिर साथ में यह भी सोच लेना कि इसका फल भी मुझे ही भोगना है। बस इसके आगे कहते हैं कि राग द्वेष के कारण क्या दशा है जीव की। तो 11वें काव्य में राग द्वेष स्वराघातों पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 9वें काव्य का जो उच्चारण था उसमें एक स्थान पर थोड़ा सा स्खलन हो रहा है, संवसंति, इसमें पढ़ते समय संवसंति नगे नगे, ये गलत है। संवसंति, ये ती जो है इसको दीर्घ नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है? संवसंति नगे नगे, सन, ये सन को लंबा खींच लो, ती को लंबा खींचोगे तो फिर दीर्घ हो जाएगा, तो अशुद्ध उच्चारण होगा। संवसंति नगे नगे, ऐसा इसका उच्चारण करना, एक बार कर लो। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम। इसको त्र्यंगुलं बोलना, त्रयंगुलं नहीं बोलना, त्र्य, त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। अब जो इस प्रकार चिंतन न करके, किस प्रकार कि ये संयोग संबंध सारे रैन बसेरे के समान है पंछियों के, और फिर जिसने खुद कोई गलती की है उसी को दंड मिलता है, तो अपराधी को ही दंड मिलता है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो दंड के समान है, तो इससे सिद्ध होता है कि मेरा अतीत अपराध से युक्त है। इसलिए अगर मैं अपराधी हूं तो दंड से नाराजी कैसी, दंड भोग लूंगा तो फिर आगे दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर किसी को सजा मिली है, कैद मिली है, 5 वर्ष की कैद मिली किसी को, वो अगर जेल से भागता है तो और भयंकर सजा मिलती है उसको। इसी प्रकार अगर मेरे पाप कर्म का फल मुझे मिल रहा है, मुझे दंड मिल रहा है, उस दंड से यदि मैं भागूं अथवा दंड देने वाले को मारने लग जाऊं, तो फिर कर्मों का न्याय तो बहुत भयंकर होता है। अगर दंड भोगते समय भी मैं फिर अपराध कर रहा हूं तो फिर उसका और नया दंड मिलेगा। तो इस प्रकार बढ़ता ही चला जाएगा संसार, जो अनादिकाल से अपन करते आए हैं कि गलती करते हैं, फिर जब सजा मिलती है तो फिर नई गलती करते हैं, फिर और सजा मिलती है, फिर नई गलती करते हैं। तो ये क्रम अनादि से चल रहा है। कर्म बांधा, कर्म का उदय आया, उदय आया तो राग द्वेष किए, राग द्वेष किए तो नया कर्म बंधा, फिर उसका उदय आया, फिर राग द्वेष किए, फिर नया कर्म बंधा। यही तो संसार चक्र है। तो जो इस प्रकार चिंतन नहीं करता, विराधक माने अपराधी हूं, और अपराधी को दंड देने वाले पर क्रोध करने का क्या अधिकार है, क्यों नाराज होता है? जब अपराध किया है तो दंड तो मिलना है, कोई बात है कि अगर पाप करने का फैसला कर लिया किसी ने, तो उसको साथ में यह भी फैसला कर लेना चाहिए कि इसका फल भी मैं ही भोगने वाला हूं, एकदम कायोत्सर्ग करके इसका फल भी मैं भोगूंगा। तो ठीक है, फिर तो उसका खुद का चॉइस हो गया ना, स्वतंत्र है, उसने चुना है कि पाप करके मैं ही इसका फल भोगूंगा। लेकिन फल भोगते समय लोगों की हालत बिगड़ जाती, पाप करते समय उतनी परेशानी नहीं होती, पाप तो बड़े मजे से कर लेते हैं, लेकिन जब फल सामने आता है तो भोगते समय फिर अरे वो सत्यघोष जैसी स्थिति होती। सत्यघोष जब पकड़ा गया था श्रीभूति पुरोहित, तब तो राजा सिंह सेन ने उसको दंड दिया, और फिर उसको कहा कि इन 3 दंडों में से तुम बोलो कौन सा दंड तुम्हें ठीक लगता है। 3 दंड थे, पहला दंड था कि गोबर खाओ, दूसरा दंड था वज्र मुष्टि पहलवान के 30 मुक्के खाओ, और तीसरा दंड था कि अपनी सारी संपत्ति है हमें सौंप दो। अब लोभी आदमी संपत्ति तो सौंप ही नहीं सकता था, तो उसने फिर वो तीसरा दंड तो बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। फिर वज्र मुष्टि पहलवान के बारे में विचार किया तो लगा कि इसके तो 3 ही मुक्के काफी है अपने लिए, 30 मुक्के कहां से खा सकते हैं। तो फिर अंत में उसने पहला दंड स्वीकार किया, लेकिन कर नहीं पाया। दंड स्वीकार तो किया लेकिन नहीं कर सका वो। तो फिर उसके बाद वज्र मुष्टि की बारी आई, तो उसके 3 मुक्के में ही धराशायी हो गया, तो बोले कि बस 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 बस। फिर वो संपत्ति लुटाई, तो संपत्ति लुटाते समय भी उसको बेचैनी हो गई, तब फिर राजा ने उसको देश निकाला दे दिया, अपमानित करके गधे पर उल्टा सवार करके मुंह में काजल पोत कर गले में जूतों की माला पहनाकर उसकी विदाई कर दी। तो उसने वैर मांग लिया, और फिर आगे चल करके देखो ये स्थिति होती है कि छोड़ता नहीं फिर जीव, वो संसार बढ़ता ही चला जाता है। उसने राजा से वैर बांध लिया, और फिर आगे 8 जन्मों के बाद राजा विदेह क्षेत्र में संजयंत नाम के एक मुनि पर मुनि बन गए, और फिर वो जो जीव था सत्यघोष का, वो भी संसार भ्रमण करता हुआ एक विद्याधर बना। फिर विद्याधर ने उन मुनि को विद्या के बल से विदेह क्षेत्र से लाकर भरत क्षेत्र में नदियों में डाल दिया, 5 नदियों का जहां समागम संगम होता था वहां डाल दिया, और बाकी यहां के विद्याधरों को भड़काकर भयंकर उपसर्ग करवा दिया। उस उपसर्ग में मुनिराज के प्राण निकल गए, लेकिन प्राणों के साथ उन्होंने बाकी भी आयु कर्म के साथ सभी कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो ये स्थिति हुई। अब उनने वैर नहीं किया तो फिर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, इसने वैर किया तो उसको संसार मिला। तो ये क्रम अनादि से चल रहा है, राग और द्वेष रूपी द्वई जोड़ी युगल। दीर्घ नेत्र, दीर्घ नेत्र लंबी लंबी रस्सियां, नेत्र को बुंदेलखंड में नेत्रा बोलते हैं, मक्खन निकालते हैं जब, मथानी तो ठीक है बीच में रहती है, लेकिन उसको घुमाने वाली जो उसमें रस्सी लिपटी रहती है उसको नेत्रा बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी में नेत्रा बोलते हैं ना उसको। राग और द्वेष की नेत्राकर्षण, आकर्षण यानी खींचा था नहीं, खींचना। अब क्या है कि एक रस्सी खींचोगे, अब राग करते समय तो द्वेष नहीं करोगे ना, राग ऐसे होगा एक तरफ खींचेगा, फिर राग को थोड़ा ढीला करो तो फिर द्वेष में चला जाता, राग द्वेष। अब राग और द्वेष रूपी द्वई दीर्घ लंबी लंबी युगल नेत्र यानी नेत्रा माने वो रस्सियां, उनके आकर्षण कर्म, आकर्षण कर्म का होता है खींचा था नहीं, इसके माध्यम से जीव, ये जो असौ जीव है वो जीव, वो कौन जो उसमें पहले बताया था आठवें काव्य में मूढ़ मोही जीव, वह जीव अज्ञानार्थ अपने ही अज्ञान के कारण संसार आब्धव, संसार रूपी अवधि, अवधि का अर्थ होता है समुद्र, संसार सागर में सुचिरम भ्रमति, चिरकाल तक उस मथानी के समान घूमता रहता है वो रस्सी, जब तक खींचते रहोगे तब तक वो मथानी जो बीच में रहती है ना वो तो घूमते ही रहेगी उस पात्र में। उसी प्रकार संसार सागर में ये जीव राग और द्वेष रूपी लंबी लंबी रस्सियों की खींचातानी से अपने अज्ञान के कारण घूमता रहता है, घूमता रहता है, कोई इसका अंत नहीं। अनादिकाल से अनंत शरीर धारण करके छोड़े, 84 लाख योनियों में भटका, लेकिन अभी तक घूम रहा है, क्योंकि वो राग द्वेष चालू है, रस्सियों की खींचातानी तो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब समाप्ति की ओर अगर जाना हो तो फिर जिनेंद्र भगवान के मार्ग की शरण लेना पड़ेगी, और कोई चारा नहीं, ये अंत में ही प्राप्त होता है। सब 363 मदों में भटक लो और फिर अंत में ये मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, इससे फिर जीव संसार से पार होता है। चिरकाल तक संसार में भटकता है, और संसार में क्या स्थिति बनती है उसकी, विपद भव पदावर्ते परिकेवाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। पदावर्त, पदावर्त नाम का एक यंत्र होता है, उसको अरहट या रहट भी बोलते हैं। पहले बैल खींचते थे, पैरों से भी चलाया जाने वाला यंत्र होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि कुएं से उसकी जो एक एक थैली है या फिर जिसमें पानी भरा जा सकता है उसके एक एक पात्र ऐसे भर भर करके आते रहते हैं, तो उसमें एक खाली होता है तो नीचे से दूसरा भर जाता है, फिर वो ऊपर वाला खाली होगा तो नीचे से और भर जाएगा, उसका कोई अंत ही नहीं। वो जब तक चलता रहेगा तब तक एक खाली होगा दूसरा भरेगा, एक खाली होगा दूसरा भरेगा। तो संसार में भटकने वाले जीव की भी यही स्थिति है, यावत जब तक विपत अति बाह्यते एक विपत्ति टलती है, तावत तब तक अन्य प्रचुरा विपद पुरह भवंती अन्य ढेर सारी विपत्तियां लाइन से खड़ी रह जाती सामने। एक विपत्ति टली तो फिर पीछे लंबी कतार लगी हुई क्यू, और दूसरी ढेर सारी विपत्तियां सामने खड़ी होती। जैसे उसमें एक खाली हुई और फिर बाकी जो होता है उसमें पानी भरा रहता है, एक खाली होती है बाकी में पानी, तो ये क्रम चलता रहता है। तो भव पदावर्त संसार रूपी रहट में संसारी प्राणी जब तक एक विपत्ति रूपी जल को खाली करता है तब तक दूसरी ढेर सारी विपत्तियां सामने खड़ी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संसार में भटकने वाले जीव को हमेशा विपत्तियां ही मिलती रहती है। तब फिर यहां पर एक शंका होती है कि जो संपन्न लोग हैं वो तो सुखी हैं, जिनके जीवन में संकट है उनकी बात तो ठीक है, वो तो विपत्तियों से ग्रस्त है, लेकिन जो लोग समृद्ध है संपन्न है वो तो सुखी है। तो आचार्य कहते हैं कि धन से अपने आप को सुखी समझने वालों के बारे में भी सुन लो उनकी क्या स्टोरी है। दुरर्जीना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्जीना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। कोपी जन कोई मनुष्य स्वस्थम मन्य अपने आप को बड़ा सुखी समझ रहा है, किसके द्वारा? तो धनादिना धन आदि के द्वारा। अब धनादि में क्या लेना, सारी चीजें ले लो परिक्रमण में जो भी कुछ आ जाता हो, तो इनके माध्यम से जो अपने आप को सुखी समझ रहा है ये कैसे है धनादि? दुरर्जीन बड़ी कठिनाई से इनका अर्जन होता है, अर्जन यानी उपार्जन, धनुपार्जन, सपने में आकर के कोई देवता आशीर्वाद दे दे कि जा तेरे तकिए के नीचे से करोड़ों की संपत्ति निकलेगी, ऐसा नहीं होता। मेहनत से धन का उपार्जन होता है, बहुत उठा पटक करनी पड़ती है, और उसके बाद असुरक्षित, असुरक्षित रहता है धन। कभी भी कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो वो सारा धन अपने हाथ से चला जाता है। कभी टैक्स वाले रेड कर डालते हैं, छापा मारते हैं, तब चला जाता है, और कभी भूकंप आने पर भी जो आपने घर में कहीं छुपा के रखा है वो सब कहीं से कहीं चला जाता है धरती के अंदर, और भी कभी चोर लुटेरे आदि लेकर के चले जाते हैं कहीं से भी। अब बैंक अगर फेल हो जाए, बैंक अगर ध्वस्त हो जाए जिस बैंक में आपका धन है, तो क्या होगा? बुरे हाल। तो असुरक्षित भी होता है धन। तो धन आदि कैसे होते हैं? कठिनाई से उपार्जन करने योग्य, असुरक्षित और नश्वरेण, अगर कुछ भी किसी तरह से बच भी जाए तो भी नष्ट होने वाले हैं, हमेशा तो रहने नहीं वाले। और अगर आप सोचो कि हमेशा रह जाए तो आप नहीं रह सकते हमेशा, ये भी एक आफत। तो ऐसे धन आदि द्वारा जो अपने आप को सुखी समझता है, स्वस्थम बनने वाले एकदम सुखी समझ रहा है अपने आप को, वह ज्वरवान जन एव उस शीत ज्वर से पीड़ित मनुष्य के समान है। कैसा है वो मनुष्य? सर्पिशा स्वस्थम मन्य, जो घी के सेवन से अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है। अब क्या होता है कि शीत ज्वर में घी की प्रकृति शीतल होती है, अगर कोई शीत ज्वर युक्त मनुष्य घी की मालिश करवा ले और फिर घी से बने हुए हलवे आदि पदार्थों का सेवन करे और सोचे कि अब ताकत आ जाएगी, क्योंकि सुना है कि घी खाने से अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान बन जाते हैं, तो वो ऐसा बीमार आदमी जिसकी जठराग्नि पूरी मंद पड़ चुकी है, वो अगर समझता है कि इस पदार्थ के सेवन से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मोटा तगड़ा हो जाऊंगा, तो फिर वो उसकी नादानी है। उस ऊपर वाले काव्य में क्या कहा था? अज्ञानात्, अज्ञान के कारण जीव भटक रहा। तो ये उसका अज्ञान है जो धन आदि के द्वारा अपने आप को सुखी समझ रहा है, क्योंकि धन आदि में सुख नहीं है, आकुलता है। कितनी मेहनत से पैसा कमाकर फिर उसको इकट्ठा करके फिर परिग्रह आप लेकर के आते हैं। तो परिग्रह का जो सुख है वो कितना है और धन इकट्ठा करने का जो दुख है वो कितना है, तुलना करके देखो तो पता चलेगा कि धन कमाने में जितनी आकुलता हुई थी उसकी पूर्ति परिग्रह से होने वाले सुख द्वारा कहां हो पा रही है। परिग्रह से होने वाला जो क्षणिक सुख है वो तो क्षण मात्र के लिए होता है, उसके बाद फिर किसी दूसरे काम में मन भटक जाता है। आधे पौन घंटे के लिए कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है जैसे, और इसी बीच कुछ और काम आ पड़ता है तो फिर वो छोड़ करके वहां जाना पड़ता है। तो कहां सुख मिला परिग्रह से? कोई भी परिग्रह ले लो आप, बड़े बड़े बंगले हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती है, और भी किसी प्रकार की संपदा हो सकती है, लेकिन उसमें प्राप्त होने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, और कमाई में होने वाला जो कष्ट है वो दीर्घकालीन है। तो उससे वो कष्ट से जो थोड़ा सा सुख मिल रहा है उसको अगर आप सुख मानते हो तो आचार्य कहते हैं कि उस बीमार आदमी के समान है तुम्हारी स्थिति, जो घी के पकवान और मिष्ठान खा करके समझ रहा है कि अब मैं तगड़ा हो जाऊंगा। जठराग्नि है नहीं, कहां से तगड़ा हो जाएगा, पचेगा नहीं और फिर शरीर कैसे तंदुरुस्त होएगा। इसी प्रकार ये धन आदि जो है ये भी कई बार पचते नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों में ये देखते हैं कि जब संपदा बढ़ती है तो फिर वह संपत्ति वह परिग्रह उनके अंदर एक मद पैदा कर देता है, फिर वो देवशास्त्र गुरु की विनय में भी कभी कभी प्रमादी हो जाते हैं, और फिर धन दौलत के अभिमान में कई बार ऐसे पाप कमा लेते हैं कि जिसका परिणाम दुर्गति होता है। तो इसलिए धन आदि से अपने आप को सुखी समझना भ्रम है। अब फिर शंका उत्पन्न होती है कि धन आदि जिनके पास है उन पर कहां संकट है। पैसे से तो हर संकट टल जाता है, जेल भी टल जाती है, बाकी छोटी मोटी बातें तो छोड़ो, अगर कोई मर्डर भी कर दे और पैसे अगर दे दे अच्छे ढंग से तो फिर वो बाहर घूमता है, कोई और अंदर चला जाता है उसके बदले, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। तो फिर कहां विपत्ति है? तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें यही बाहरी विपत्ति विपत्ति समझ में आ रही है, अभी जो अगले जन्म में दुर्गति होने वाली है वो विपत्ति तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हारी दशा भी उसके समान है। किसके समान है? तो विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेषामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरस्तवत् विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेषामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरस्तवत्। अब कभी किसी पर छापा पड़ जाए और फिर वो बहुत सारा उसको देना पड़ जाए और मुसीबत आ जाए उसके ऊपर, अब कोई दूसरा होता है वो कभी कभी उस मुसीबत को टाल भी देता है। कई लोग छापा पड़ने पर भी सुरक्षित निकल जाते हैं, भले दो नंबर वाला लेकिन सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि अपने पुण्य पाप का खेल है, और फिर वर्तमान की मायाचारी भी उसमें सहयोगी हो जाती है थोड़ी सी। मायाचारी में भी सफलता किसको मिलती है? अगर पाप का उदय हो और आप मायाचारी करने जाओ पकड़ में आ जाओ, और अगर पुण्य तीव्र हो तो फिर आप कुछ भी दो नंबर के काम करो बचे रहो। तो यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि मूढ़ मोही प्राणी आत्मनः विपत्तिम न ईक्षते, अपनी विपत्ति को नहीं देख पाता। परेशान, दूसरों की विपत्ति तो उसको दिख रही है कि देखो उसके यहां 2 करोड़ निकले और इसके यहां ऐसा हो गया वैसा हो गया, सबका रिकॉर्ड उसके पास है, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड में कहीं चूक कर जाता है। तो अपनी विपत्ति को दूसरों की विपत्ति के समान वो देख नहीं पाता, जबकि आने वाली ये विपत्ति ये तय है कि अशुभ कर्म का बंध बांधने वाले को अशुभ फल ही मिलेगा, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता। अभी कुछ ही दिनों के बाद जब आयु पूर्ण होगी तो संभव है वह सेठ जो बेईमानी कर रहा है मर करके अपनी गोदाम में अपने अनाज के कोठे में चूहा बन जाए, अब मनुष्य से चूहा बनना है कोई संपत्तिशाली बात तो नहीं है, विपत्ति की बात है, लेकिन उसको अपनी विपत्ति दिख नहीं रही। किसके समान? तो आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया, दह्यमान जलते हुए मृगाकीर्ण जानवरों से भरे वनांतर वन में वन के भीतर तरुस्तवत पेड़ पर चढ़े हुए मूर्ख के समान। क्या होता है कि जंगल में आग लग जाती है और कोई मूर्ख पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़ करके तमाशा देखता है, तो वो हिरन फंसा आग में गया, फिर वो पक्षी उसका काम पूरा हो गया। इस प्रकार दूसरों को मरते हुए देखता है, दूसरों की विपत्ति को देखता है और वो पेड़ जल करके नीचे गिरा, ये सब देखता रहता है, लेकिन वह मूर्ख ये नहीं सोच पाता कि अभी ये आग जब इस पेड़ को लगेगी तो मेरी भी वही दशा होगी जो उनकी हो रही है। अभी तो मैं गिनती लगा रहा हूं कि अभी 7 जानवर तो गए काम से, अब वो 8वां भी फंस रहा है, भाग रहा है लेकिन बच नहीं पाएगा, अब वो अपनी गिनती छोड़ देता है। इसी प्रकार जो धन आदि के द्वारा अपने आप को सुखी मानने वाला मनुष्य है, वो जो पाप कमाई कर रहा है उसकी परवाह न करते हुए और अपने संकट को न देखते हुए दूसरों के संकट को तो खूब अच्छे से देखता है। अखबारों में भी पढ़ता है कि किसके यहां छापा पड़ा और क्या क्या निकला, सब हिसाब लगाता है, लेकिन अपने संकट को भूल जाता है। तो ये उसका अज्ञान है। वह उसी नादान मूर्ख मनुष्य के समान है जो पेड़ पर चढ़कर जंगल को जलते हुए देख रहा है कि फलाना प्राणी नष्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यही आग मुझे भस्म करेगी। और धन मनुष्य को अंधा बना देता है। ये स्थिति रहती, देखो जो धर्म से नहीं जुड़े केवल धन में ही फंसे हुए हैं तो वो धन उनको अंधा बना देता है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वांछतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वांछतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। कालस्य निर्गमम् वांछतां धनिना, धनी लोग चाहते हैं कि समय जल्दी निकले ताकि ब्याज बढ़े और मुझे मुनाफा हो, क्योंकि टाइम निकलेगा तभी तो पैसा बढ़ेगा। तो ऐसे जो धनी लोग हैं जो कालस्य निर्गमम वांछतां, समय बिताना चाहते हैं, समय का व्यय पसंद करते हैं, कैसा है वो समय का व्यय? तो बोले आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु। समय बीतता है तो 2 काम होते हैं, क्या? आयु का क्षय होता है और वृद्धि का उत्कर्ष होता है, माने ब्याज बढ़ता है समय निकलने पर, और समय निकल पर निकलने पर एक और काम होता है, वो क्या है? आयु नष्ट होती है। तो जो धनवान समय निकालना चाहते हैं क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, तो वो साथ में और क्या चाह रहे हैं? परोक्ष रूप से, प्रकट रूप से नहीं, क्योंकि समय का निकलना 2 बातों में कारण है। एक तो ब्याज बढ़ेगा समय निकलने पर, और दूसरा कार्य क्या होगा? आयु नष्ट होगी। तो फिर उन धनियों को धनम सुतराम इष्टम, जीवितात, अपने जीवन से भी ज्यादा धन प्यारा है, और सुतराम यानी अत्यधिक प्रिय है, अपने जीवन से भी अधिक प्रिय धन है, क्योंकि ब्याज बढ़ने के साथ साथ आयु भी तो नष्ट हो रही है समय व्यतीत होने पर। इसलिए धनियों की ऐसी दशा हो जाती है जो सिर्फ हाय पैसा हाय धन, हाय पैसा हाय धन उसमें फंसे रहते हैं, उनको फिर अपनी आयु नष्ट हो रही इसकी परवाह नहीं होती, बस धन बढ़ रहा है इसी में उनका मन लगा रहता है। तो ऐसे धनियों को जो समय बिताना चाह रहे हैं उनको अपने जीवन से भी अधिक प्रिय धन है। अब यहां पर कोई शिष्य प्रश्न करता है कि ठीक है, जो पैसे में ही डूबे हुए हैं वो तो इस प्रकार भूल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग धन कमाकर दान और पुण्य में लगाते हैं, परोपकार करते हैं, मंदिर निर्माण आदि करते हैं और भी अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो उनका धन कमाना क्या बुरा है? यानी प्रश्न ये हुआ कि अगर कोई पुण्य करने के लिए धन कमाए तो क्या खराबी है, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर अपन आगे देखेंगे।